पीना है, अब ठहर जाए ठहर जाए, वही पर पानी इत्यादि पीना या जूस देना, अभी एक घंटे के लिए बंद रखें। यदि परीक्षित महाराज जी के यहाँ उनकी सभा में यदि 7 दिन तक पानी नहीं पिया, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, तो इनसे डिस्टर्ब होता है, इसलिए अभी कष्ट करके इसको बंद रखा जाए। जिसको प्यास लगे वो बाहर जा करके उधर से पानी पियाए, और नहीं तो इधर से देने लेने से कीर्तन का और प्रवचन का महत्व कम जाता है, इसलिए अभी स्टॉप रखिए या उधर से ले जा करके पिलाएंगे। हाँ देखिए, कृष्ण का जन्म हुआ, गोपियाँ बधाई देने के लिए आईं, और कृष्ण को बधाई देते हुए भी कैसे उनको चिढ़ा भी रही हैं और प्यार भी कर रही हैं। कृष्ण का सब समय ही जन्म है, आज भी उनका कहीं ना किसी ब्रह्मांड में उनका जरूर जन्म हो रहा है, इसलिए एक बधाई का कीर्तन भाई जरा सुना दो। पाला पड़ गया रामलीला में, रामलीला में सीता जी को घर से बाहर कर दिया, निकल जाओ रावण के यहाँ तू रही। लक्ष्मण जी को अंत में छोड़ दिया, राम कभी नतमस्तक किसी के सामने नहीं हुए, थोड़ी सी कहीं देखा इधर उधर मर्यादा को भंग करते हुए, बस उसको छोड़ दिया सदा के लिए। निशिंग भगवान हिरण्यकश्यप को दिन में मरेगा नहीं, रात में नहीं मरेगा, ऐश्वर्य से उसे एक सेकंड के अंदर उसे जमलोक को भेज दिया। कृष्ण द्वारका में आए, सब रानियां उनसे थर थर कांपती थी, पुतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, अभी तक गोपियों का पल्ला नहीं पड़ा था, अब जब गोकुल में आए तो पल्ला पड़ा उनका गोपियों से। गोपियां क्या कहती हैं, हमारे पैरों के महावर निकल गए हैं, जरा इसको फिर से लगा दो, थक गई हैं, हमारे पैर दबा दो, संवाहन करो। कृष्ण हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके ब्रज में चलते हैं, गोपियों के समान और कोई भी उनको नाचा नहीं सका, एक इतने छाछ पर उन्होंने नचा दिया। गोपियों से ऐसा पल्ला पड़ा, मक्खन चोरी कर रहे हैं तो जशोदा मैया उनका कान पकड़ कर कर हाथों को पैरों को बांध दिया और कमर से भी बांध दिया, ये गोपियों से पल्ला पड़ने का है। वह स्वयं भगवान हैं, किंतु प्रेम के द्वारा गोपियां उनको वशीभूत कर लेती हैं और जैसे चाहती हैं वैसे नचा देती हैं। तो वही गोपियां करें कि अब वो तुम भगवान हैं हम जानते हैं, सुना है यह नारद जी से तुम गोकुल में अब जन्म लिया, अब तो गोपियों से पल्ला देखो पड़ा है, अब देखो चलो।
सची पुत्र मत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजवुरीपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासाम प्राप्तो यस्य प्रथिति कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद तवैवास्मि नजिमामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं।
कृष्ण परम दयालु हैं, करुणा के अहेतुकी सागर हैं। वे कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भी हैं। उनकी इच्छा से मिनटों में, सेकंडों में उनके आधिकारिक देवता लोग, सेवक लोग विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं। भगवान के बहुत से अवतार बतलाए गए हैं, किंतु सब में शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण ही सबके मूल हैं। कृष्ण में ही जितने भगवत अवतार सब अवस्थित हैं, इसलिए कृष्ण की सेवा करने से, उनका भजन करने से सबका भजन हो जाता है। वही कृष्ण जगत के जीवों पर बिना किसी कारण अहेतु की उनका चित्त द्रवित हो जाने से इस कली काल में आज से 500 वर्ष पहले राधिका जी का मूड भाव और उनकी ऊपर की कांति रंग लेकर महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। मनुष्य की तो बात क्या, भक्तों की तो बात क्या, पशु पक्षी कीट गुल्म लता जितने जंगली जानवर भी हैं, सब पर उन्होंने कृपा की वर्षा की। ब्रह्मा इत्यादि के लिए, देवताओं के लिए, नारद के लिए जो प्रेम बहुत दुर्लभ है, उस प्रेम को भी जैसे तैसे जो सामने आए उनको लुटाया। इसलिए जितनी भगवत्ता के गुण हैं वो सबको समेटे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए थे। जब रूप सनातन जी ने उनके दर्शन किए तो उन लोगों ने मनी मन में संकल्प कर लिया कि हमको अब इस दुखमय संसार में नहीं रहना है, अब हम इसको छोड़ करके अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा समय अब भगवान के भजन में ही बिताएंगे। विशेष करके अब इस वृंदावन को छोड़ करके और किसी जगह नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ का वातावरण राधामय हुआ है, सब समय रहता है, कृष्णमय वहाँ का वातावरण। वहाँ के सुखसारी भी राधे राधे करते हैं, वहाँ के चौकीदार इत्यादि भी राधे राधे करते हैं, वहाँ की मिट्टी से, वहाँ की भूमि से, वहाँ के पर्वतों से, नदियों से भी राधे राधे की ध्वनि निकलती रहती है। वहाँ पर यदि भजन करना है तो हमको भी वहीं पर जाना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री और प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ दैट मोहम्मडन किंगडम थे, वो सबको छोड़ दिया, छोड़ करके अपनी धन संपत्ति को का आधा भाग ब्राह्मणों को वितरण कर दिया। ब्राह्मण माने योग्य, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों को, नामधारी और वेशधारी ब्राह्मणों को नहीं। और इसके बाद में जो कुछ रखा उसका एक चौथाई भाई घर के लिए पालन करने के लिए, जीव गोस्वामी बच्चे थे उन लोगों को पालन करने के लिए दिया, और थोड़ा सा जो बच रहा वो सनातन गोस्वामी के मुक्ति के लिए किसी बनिए के पास में रख दिया और वृंदावन में चले। सनातन गोस्वामी भी कुछ दिनों के बाद में किसी प्रकार से जेल खाने से निकले, बड़े कष्ट से वो भी ब्रज की तरफ में चले। उनको पता लगा जी महाप्रभु ब्रज में गए। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट रहते, कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम हे। कभी तन में रहते, कभी कुछ, कभी चलते चलते सिंहों के मुख के ऊपर भी पैर रख देते, शीर पर। विषधर सर्पों से भी एकदम प्रमाद उन्मत्त ग्रस्त हैं, उनके भी सिर पर पैर रख देते, और वे लोग भी कृष्ण कृष्ण कहने लगते। वृंदावन में अधिक दिन रहना उचित नहीं समझा, किस लिए? यदि मैं अधिक दिन रहूंगा तो राधा जी का भाव और कांति जो लेकर के आया हूँ छिप करके इस रूप में ये प्रकट हो जाएगा, सभी लोग जान जाएंगे ये मैं कृष्ण हूँ। इसलिए वहाँ से लौट रहे थे तो प्रयाग में हमारे रूप गोस्वामी के साथ में उनकी भेंट हुई। बहुत उस समय उनकी उम्र अभी बहुत छोटी थी, नौ युवक थे। महाप्रभु जी उस समय कम से कम तो 40 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र थी, इनकी उम्र होगी अभी 25, 26, 27 ऐसी उनकी उम्र होगी। दोनों प्रयाग में मिले, महाप्रभु उनको देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, तुम कैसे संसार रूपी कूप से निकल करके आया? संसार से निकलना बड़ा भारी कठिन है, माता की ममता, स्त्री का स्नेह, पुत्र का वात्सल्य और संसार की चीजों के प्रति आसक्ति छोड़ करके, मैं और मेरा छोड़ करके भगवान का भजन करना बड़ा भारी कठिन है, विशेष करके संसारी लोगों के लिए। सब छोड़ करके तुम आए, ठीक है। उनको कुछ उपदेश दे रहे हैं, आज उन्हीं उपदेशों में से थोड़ा सा आप लोगों के सामने दिया। संसार में भक्ति अधिकांश लोग, विशेष करके हम हिंदुओं में से अधिकांश लोग करते हैं, विशेष करके ब्रज का निकट है ये, यहाँ के लोग भी और भी लोग किसी न किसी रूप में भगवान का नाम लेते हैं। जो शराब भी पीते हैं वो भी कृष्ण कृष्ण कह लेते हैं, जो मदिरा मांस खाते हैं वो भी कर लेते हैं। बंगाल में काली पूजा करने वाले, मांस मछली खाने वाले, वो लोग भी कृष्ण कृष्ण कह लेते हैं। वो लोग समझते हैं कि हम ठीक हैं, हमारा भजन ठीक से हो रहा है। इधर में भी हम लोग भक्ति के शुद्ध स्वरूप को न जान करके अपने मनमाने ढंग से भगवान का भजन करते हैं, उसको भी भक्ति समझ लेते हैं। उनसे कुछ अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, कुछ प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ तक कि चुटकी बजाते हुए स्वर्ग जैसा सुख या स्वर्ग भी मिल सकता है, संसार से छुटकारा होकर के मुक्ति भी मिल सकती है, किंतु ब्रज का प्रेम नहीं मिलेगा, ये असंभव है। कोटि कोटि जन्मों में यदि कोई संकीर्तन करता है, जो सर्वोच्च चीज है साधनों में, श्रवण करता है, भक्ति करता है, नवध्या भक्ति, तो भी ब्रज का प्रेम ये नहीं मिल सकता। इसके लिए कुछ नियम हैं। आपको यदि वकील बनना है तो मनमाने तरह से कानून को पढ़ने से नहीं होगा, लॉ कॉलेज में जाना पड़ेगा। डिग्री लेने पर भी आपको कहीं ना कहीं किसी के जूनियर वकील के रूप में होना होगा, जूनियर के रूप में कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसके बाद में तब फिर कहीं आप उचित रूप में आप कानून होकर के अपना काम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए उचित शिक्षा की ज़रूरत है, इसलिए भक्ति भी उपयुक्त और अनुपयुक्त दो पद्धति से होती है, दो प्रकार के साधन। एक मनमाने ढंग से भगवान का नाम लेते हैं, जैसा तैसा चलते हैं, जो स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं है उसको भी भक्ति समझ लेते हैं। गाय को पाल लिया, उसका दूध 10 मन हो रहा है, उसमें से 5 किलो चला गया ठाकुर जी के लिए, बाकी अपने काम में लग गया, इसको भी भक्ति समझेंगे। कोई फूल का बिजनेस कर रहा है, उसमें कुछ फूल ठाकुर जी के लिए चले गए, बाकी अपने काम में लगे, इसको भी भक्ति समझ लेंगे। भक्ति का स्वरूप नहीं जानने से ये गड़बड़ियां होंगी। तो रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके भक्ति का शुद्ध स्वरूप किसको भक्ति कहते हैं, कैसे भक्ति करने से हम ब्रज का प्रेम पा सकते हैं, कैसे हमारा यथार्थ कल्याण हो सकता है, इसके लिए शिक्षाएं दी। इन शिक्षाओं का जगत में अभाव है। आज स्वरूपता भक्ति न करके संग सिद्धा भक्ति और आरोप सिद्धा भक्ति, कर्म मिश्रा ज्ञान भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, जो भक्ति स्वरूपता नहीं है, आजकल लोग उसी को भक्ति समझ रखते हैं और उसे वंचित हो जाते हैं। यदि ये सब ग्रंथ नहीं होते, चैतन्य चरितामृत इत्यादि शुद्ध भक्ति के ग्रंथ नहीं होते, श्रीमद् भागवत नहीं होता, उसको समझाने वाले नहीं होते, तो शुद्ध भक्ति से हम लोग वंचित हो जाएंगे। वेश ऊपर से हमने धारण कर लिया है साधु का, लाल कपड़ा या सफेद तिलक धारण करते हैं, गले में माला है, सब कुछ है, भगवान का नाम भी हम 16 माला जप लेते हैं, किंतु उचित रूप से अपराधों को छोड़कर शुद्ध संबंध ज्ञान से युक्त होकर जब तक भजन नहीं करेंगे, ब्रज का भजन नहीं, वो भी कोई ब्रजवासी, ब्रजवासी मैंने क्या, ब्रज के भाव से भरा हुआ, ब्रज में रहने वाले ही ब्रजवासी नहीं है, पंडे टंडे लोग जितने हैं वो सब ब्रजवासी नहीं है। नंद जसोदा के भावों को लेकर, जसोदा मैया के भावों को लेकर, गोपियों का भाव का लेकर के जो भजन करते हैं, कृष्ण से वैसा संबंध रख करके, वो ब्रजवासी हैं, साधारण लोग नहीं। ऐसे भक्तों के जो भक्ति तत्व को जानते हैं, खुद भजन करते हैं, ऐसे लोगों के मुख से भागवत और चैतन्य चैतन्य इत्यादि सुन करके हम शुद्ध भक्ति की तरफ में बढ़ें, अन्यथा हम अपने उद्देश्य से भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी जी जब मिले हमारे चैतन्य महाप्रभु से, तो उस समय में महाप्रभु जी उनको कह रहे हैं, सुनरू भक्ति रसे रलखण, सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाएगा। मैं भक्ति का स्वरूप, भक्ति रस का स्वरूप, भक्ति तत्व का विचार, यह सब मैं तुमको बतला रहा हूं, तुम इसको अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुन करके इसका अनुसरण करना। मैं पूरे रूप में नहीं बतला सकता, वेद इतना बड़ा ग्रंथ उसमें नहीं बतलाया जा सका। श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का सार है, गीता भी समस्त उपनिषदों का सार है, किंतु श्रीमद् भागवत क्या है, निगम कल्प तरुर गलित अंग फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजितम। उपनिषदों का सार गीता है और श्रीमद् भागवत क्या है, समस्त वेद उपनिषद शास्त्र जितने हैं सबका सार रस है श्रीमद् भागवत। इसलिए गीता से भी, गीता प्रारंभिक पुस्तक है धर्म राज्य की, भक्ति की, और श्रीमद् भागवत अंतिम उसका ग्रंथ है, उसका विचार समझना। गीता के उपदेश तो कुछ समझ में आ जाएगा, भागवत का विचार समझना बड़ा भारी कठिन है। चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ के द्वारा उसको समझा जा सकता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, ये तुमको मैं थोड़ा सा सूत्र के रूप में बतला रहा हूं, जैसे तुम एक महासमुद्र है प्रेम का, उसमें एक बूंद चखो, यदि अमृत का पारावार समुद्र हो, उसमें एक बूंद चखेंगे तो क्या होगा। जैसे बच्चों को आज कोका कोला कोई चीज है ना, दे देते हैं, अब वो दूध नहीं खाएगा, वो दूध नहीं देगा, दूध में ऐसा टेस्ट उसको नहीं मालूम पड़ता, वो एक तरह से विष है कोका कोला। दूध अमृत है, विशेष करके मैया का दूध, इसलिए गाय भी वैसे ही माँ है, उसका दूध अमृत है, किंतु लोगों को अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता। तो हम लोग यदि उसका अमृत का एक बूंद भी मिल जाए, यदि भक्ति की एक बूंद भी हम चख लें, उससे आप भ्रष्ट जीवन भर नहीं हो सकते। रूप गोस्वामी इतने जैसे बहुत जल्दी कैसे बढ़ गए, महाप्रभु जी ने उनको चखाया और उन्होंने सारे जगत को चखाने की चेष्टा की। बतला रही है। देखो, भक्ति को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो, तुम है कौन, तुम भक्ति करने वाला है कौन, तुम्हारा स्वरूप क्या है। कहते हैं हमारा स्वरूप जीवों का स्वरूप केशाग्र सतभागस्य श्रद्धा कल्पिता, हमारा केश एक, उसके अग्रभाग को 100 भाग कीजिए और फिर एक भाग को फिर उसमें से एक भाग को फिर 100 भाग कीजिए, यह संभव पर नहीं है। उससे भी छोटा क्षुद्र जीव का स्वरूप है, यह शरीर में कहाँ है पता नहीं चलता, किंतु सब जगह है, कहीं भी चीटी काटो वो सब जगह में मालूम, किंतु है कहीं एक जगह में। जैसे यहाँ पर कोई कस्तूरी रख दे या धूप जला दे, चारों तरफ में उसका पहुंच जाएगा सुगंध। सूर्य जैसे एक दिशा में एक जगह स्थिर है और सारे विश्व को प्रभाव विस्तार कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, ऐसे एक जगह में है, बहुत छोटा क्षुद्र है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जगत में जिसके द्वारा समझाया जा सके। ऐसे छोटा हमारा स्वरूप है, किंतु है भगवान का अंश। ये अंश दो प्रकार के हैं, एक बद्ध और एक मुक्त। बद्ध जीव जो हैं ऐसे कोटि कोटि, ये वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में, नित्य धाम में उनकी सेवा करते हैं विविध प्रकार से, कोई पत्नी के रूप में, कोई प्रिया के रूप में, प्रियतमा के रूप में, कोई मैया के रूप में, कोई बाप के रूप में, कोई सेवक के रूप में, अधिकांश लोग सेवक रूप में, उसके बाद में सखा रूप में, उसके बाद में मैया बाप के रूप में, और बिरले लोग जो हैं कोटिश्वपि, कोटि कोटि करोड़ों में से कोई एक उस रूप में सेवा करते हैं। तो ये मुक्त जीव है, उन्होंने देखा नहीं ये जगत कैसा है, इस जगत में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है, दुख को ही सुख मान रहे हैं। जैसे कोई पियक्कड़ मदिरापान करने के बाद में नाली में गिरा हुआ भी अपने को और समझता है कि मैं शहंशाह हूँ, ऐसे हम लोगों की स्थिति, हमको ये दुख दुखी नहीं मालूम पड़ रहा, ऐसे हम बेहोशी की एक तरह से हालत में हैं और समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो हम लोग हैं, जो कि अनादि काल से भगवान को भूले हुए इस जगत में पड़े हुए हैं। इसमें भी तरह तरह के स्टेज के हैं, कोई भगवान से एकदम भूल करके विमुख है, विषयों में गधे और कुकर जैसे, सुकर जैसे एकदम विषयों में मिला। मनुष्य में भी कुछ ऐसे हैं जो कुकर और सुकर की भांति भगवान से कोई भी संबंध नहीं, परमात्मा से बस इन्हीं कामों में लगे हैं। ये मनुष्य रूप पढ़ने पर भी जानवर है, और जानवरों में भी कैसे हैं, गधे, गोखर, गोखर माने क्या, खर माने गधे, ये गधे के समान है। कुछ और हैं वो कैसे हैं, कुछ कुछ भगवान की तरफ उन्मुख हैं, उनको भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, किसी न किसी रूप में देवता के रूप में भी भगवान का पूजन करते हैं। उनसे भी कुछ श्रेष्ठ हैं जो शुद्ध गुरु पदाश्रय करके कुछ साधन भजन करने की चेष्टा करते हैं। उनसे भी कोई श्रेष्ठ हैं गुरु से, शुद्ध गुरु से हरिनाम दीक्षा लेकर के और कृष्ण से संबंध कुछ लगाया, क्या वो हमारे प्रभु हैं, मैं उनका नित्य दास हूं। इनसे भी जो ऊंचे हैं, मेरे कृष्ण सखा हैं ब्रज, उससे भी ऊपर वाले, कृष्ण हमारा बेटा है, उससे भी और ऊपर रुक्मिणी इत्यादि के भाव, क्या हमारे पति हैं, और उनसे भी ऊपर गोपियों के भाव। इस तरह से उनसे संबंध रख करके दिन रात भजन करते हैं। इनमें से भी कोई अभी साधन भजन में लगे हुए हैं, कोई साधन भजन में जिसको निष्ठा हो गई है, अब वो इधर से उधर नहीं हो सकते लाख दुख कष्ट होने पर, उनसे भी कुछ ऊपर उठे हुए हैं जिनको साधनों में श्रवण कीर्तन इत्यादि में उनको कुछ रुचि उत्पन्न हो गई है। यदि तुम उनको घर से भी निकाल दो वो भजन नहीं छोड़ेंगे या छोड़ेंगे, लाख उपाय करो। जैसे मीराबाई का पति, उसके घर के लोग उसको सताते हुए, उसको हरिभजन से च्युत करने की चेष्टा की, किंतु किसी की बात नहीं। खंड खंड यदि जाए होई जाए देह प्राण, खंड खंड बोटी भी कर दे प्रहलाद महाराज की भांति कर दे हरिदास ठाकुर की भांति भजन है, ऐसे निष्ठा। इससे भी ऊपर कोई जिसकी भगवत भक्ति जिसके हृदय में अवतरित हो गई है, प्रकाशित हो गई है शुद्ध सत्व, इससे भी ऊपर में है जब प्रेम का आभास उनके हृदय में। यहाँ तक जगत की स्थिति है, इसके बाद में इस जगत से ऊपर कोई स्थिति नहीं। महाप्रभु उसी चीज को धीरे धीरे इनको बतला करके कह रहे हैं सूत्र के रूप में। हमारा स्वरूप चिन्मय है, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाश। जीव कभी भी जीव से अतिरिक्त भगवान नहीं हो सकता, जीव जीव ही रहेगा, शुद्ध हो जाएगा, भगवान की शुद्ध सेवा करेगा यहीं तक। कुछ लोग कहते हैं कि जीव ही परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा एक ही, यह बात गलत है। परमात्मा एकमात्र कृष्ण है, इस चीज को समझा जाए। कुछ लोग देवता देवियों को भी भजन करके सुख चाहते हैं, उनको सुख मिलेगा थोड़ा, और फिर सुख मिलने के बाद में फिर उनको दुख होगा। यहाँ तक ईश्वर की प्राप्ति होकर के भी जगत से इस जगत में आना होगा। कुछ लोग भजन करके नारायण की भी सेवा को प्राप्त कर लेते हैं, ये भी कम नहीं है। नारायण की सेवा को नारद की भांति या और लोगों की भांति पाना, ये कम नहीं है। किंतु ब्रज भक्ति और ब्रज जो प्रेम है उसकी तुलना में बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। इसलिए हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने, गुरुओं ने इस चीज का निर्णय किया, विशेष करके श्रीमद् भागवत में, जो प्रेम कृष्ण को भी वशीभूत कर ले वो गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु उसी के लिए दिशा निर्देश कर रहे हैं। इसलिए हमारा स्वरूप तो हुआ ये, मैं बहुत ही क्षुद्र चीन में सच्चिदानंदमय तत्व हूँ, किंतु अपने प्रिय कृष्ण को भूलकर हम इस संसार में नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। ऐसा मत समझिए धन होने से ही हम सुखी हो जाएंगे। कुछ दिन पहले ईरान का सम्राट विश्व में सबसे धनी था, क्योंकि वहाँ पर तेल बिक्री होती है, विश्व में नंबर वन। किंतु उसको हो गया कैंसर, और इसके बाद में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ, परिवार वालों और देश वालों से तंग आकर के अमेरिका चला गया। वहाँ पर अस्पतालों में एक एक बूंद पानी के लिए मरा, अपने देश को लौटना चाहता, देश में भी नहीं लौट सकता, कितनी दुर्गति। नेपोलियन बोनापार्ट का आप जानते हैं, हिटलर की कैसी दुर्गति हुई आप जानते हैं, हमारे हिरण्यकश्यपु और रावण की क्या दुर्गति हो गई। इसलिए धन होना ही सुखी नहीं है, उसका जीवन कैसा है सुखी है इस पर विचार हम लोग करते हैं। इसलिए महा कृष्ण है आराध्य सबके। देवताओं के भजन करने से कुछ लाभ थोड़ा सा हो सकता है, किंतु अधिक नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष सबको छोड़कर के कृष्ण को आराध्य मानते हैं, जीव उनका आराधक है। दूसरी बात ये, भगवान को खुश करने के लिए जितने भी प्रकार के पथ हैं, हम लोग अभी जिसमें हैं ये कर्म मार्ग है। कर्म अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करने से अच्छी कुछ गति होगी, किंतु फिर भी आपको दुख भोगना पड़ेगा, माया से निकल नहीं सकते। ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, किंतु ये भी ठीक नहीं। मुक्ति तो पत्थर की भी है, पत्थर को टुकड़ा को काटो तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा ना? पत्थर को दुख नहीं होगा क्योंकि निर्जीव है, उसको काटो पीटो पीस दो तो भी नहीं, उसको नहीं होगा। इसलिए मुक्ति में भी सुख नहीं है, एकमात्र भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। अब भक्ति क्या है इसी को ये बतला रहे हैं। जगत में बहुत प्रकार के जीव हैं, एक जड़ है, एक स्थावर है, एक जंगम है, पेड़ पौधे ये सब जंगम हैं, स्थावर हैं, जो चलने वाले हैं चींटी से लेकर के हाथी इत्यादि, मनुष्य जीव देवता गंधर्व ये चलने वाले हैं, और स्थावर चल नहीं सकते। पेड़ों में भी जान और आत्मा है, छोटी छोटी घासों में भी है, ये भी अपने कर्म से भगवान को भूल करके कुछ ऐसे अपराध जिनके हुए हैं जो ये सब बने हुए हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग कर रहे हैं। उसमें मनुष्य जाति बहुत कम है, बहुत कम है। पशुओं की तुलना में, मच्छरों की तुलना में मनुष्य की कितनी गिनती है, चींटियां कितनी भरी पड़ी हैं। इस तरह से मनुष्य की संख्या बहुत कम है, और उनमें भी म्लेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, भगवान को नहीं मानने वाले, और जो भगवान कहते हैं और वहाँ से वो घूमते घूमते नीचे गिर पड़ते हैं, उनको आग में सेक करके बड़ा उत्सव करके खा जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। सांप का अचार आप लोगों ने सुना होगा, चीन में सांप के अचार बनते हैं, सबसे बेस्ट अचार उनके लिए सांप का होता है। चावल को रसोई बना करके जब कीड़े एकदम भरभराने लग जाएंगे, उस कीड़ों को खाते हैं, चावल को नहीं खाते। जैसे चना भी जाते हैं हम लोग, ऐसे मुर्गी के बच्चों को ऊपर से थोड़ा सा काट करके नमक और क्या क्या मसाला दे करके ऐसे ही खा जाते हैं। ऐसे सब जीव भरे पड़े हैं, जिनको जीव का तत्व का पता नहीं, समझते हैं कि यही मैं हूं, और बिल बिलाते हुए मरते हैं। इन मनुष्यों में भी जो बुद्धिमान कुछ हैं, वे वेद को मानते हैं। वेद में लिखा गया, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, पिता माता का सम्मान करो, सदाचार संपन्न हो करके दूसरे किसी को कष्ट मत दो, अहिंसा परमो धर्म, तन से, मन से, वचन से किसी को कष्ट न दो। हो सकता है? असंभव है। आप श्वास लेंगे लाखों जानवर मरेंगे, कीड़े। पानी पिएंगे, पानी में कीड़े ही तो हैं, और क्या है। इसलिए आप ऐसा कर नहीं सकते तो भी कहते हैं, सब्जियों में प्राण है, कहां तक आप करेंगे। गेहूं में प्राण है, गेहूं को पीसते हैं, जीव मरते हैं कि नहीं। चावल खाते हैं, चावल में प्राण नहीं है, आत्मा है, नहीं तो फिर उससे दूसरे पौधे कैसे जन्मते हैं। किसी तरह से बच नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म, यह अहिंसा हो ही नहीं सकती, तो भी लोग पालन करते हैं। ऐसे चीजों को हमारे शास्त्रकारों ने बतलाया, जैसे एक चावल है, उसका धान, उसको लगा दीजिए, उससे हजारों पेड़ होंगे। आम की या किसी एक पेड़ की डाली काटने से फिर उसमें पत्ते आ जाते हैं। एक धान को, गेहूं को काट लिया, फिर दूसरा लगा दिया। ये आम का पेड़ है, उसमें से फल ले लेंगे वो मरेगा नहीं, बल्कि नहीं लेंगे तो ही गड़बड़ है। इस तरह से ऐसे चीजों को लेना, उसको पाप नहीं समझ जाए, तो भी उसमें है जरूर। तो जो इनका विचार करने वाले हैं वो कुछ मनुष्य हैं, ऐसे ऐसे कोटि कोटि वेदज्ञ ब्राह्मणों में से भी कोई एक आदमी यथार्थ रूप में कुछ भगवान के लिए साधन करता है। इनमें से भी नारायण का भजन करने, देवताओं का भजन करने वाले करोड़ों में से कोई एक भगवान की तरफ आता है। उस भगवान में भी अब राम इत्यादि बहुत से भगवान के अवतार हैं, उनके तरफ में चाहे कोटि कोटि नारायण के भक्तों में से, तत्व को जानने वाले में से कोई एक आदमी है जो कृष्ण का भजन करेगा। मुक्तानाम सिद्धानाम, नारायण परायण, जो मुक्त हैं उनमें, जो सिद्ध हैं उनमें नारायण का भक्त बहुत से हैं, उनमें से कोई एक बिरला कृष्ण का भक्त होगा। आप लोग जो यहाँ पर हैं, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई कहे जे गणेश की पूजा जरा कराओ, का जब प्राण जाएगा नहीं करेंगे। शंकर जी का भजन जरा जल चढ़ाओ, नहीं करेंगे। ऐसे कृष्ण के प्रति निष्ठा ना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए इनको कहिए हाँ शंकर जी पर जल चढ़ाओ, गणेश जी को भी मानो, किंतु कृष्ण को सर्वोत्तम मान करके करो। धीरे धीरे उनको लाया जाता है। गीता में भी ऐसे ही बतलाया, क्या बतलाया, देवताओं की जो उपासना करते हैं भाई वो मेरी ही उपासना है, कोई बात नहीं है, करो, किंतु जरा सोचो समझो वो कैसी है, अविधि पूर्वक, ऐसे नाक डायरेक्ट छूने की अपेक्षा वो कैसी है, ऐसे छूते हैं, अविधि पूर्वक है,
एक आदमी अपने जन्मदाता पिता की सेवा करता है, बड़े प्रेम के साथ में खिलाता पिलाता सेवा करता है, और दूसरा बेटा कहता है ए लीजिए ये बेकार का समझ करके, ये बूढ़े मरने वाले हैं, इनसे जो कुछ था हमने तो ले लिया, आप तो कोई लाभ तो है नहीं, जैसे तैसे दो रोटी दे दिया, वो भी गाली गलौज के साथ में, अपमान के साथ में, जैसे मानो भीम दे रहा है धृतराष्ट्र को ऐसे। तो वैसे से न लेना ही, मर जाना ही बल्कि अच्छा है। ऐसे ही समस्त जितने भी जगत में उपास्य हैं उनमें सबके मूल कृष्ण हैं ऐसा समझ करके उनका भजन करना, जगत में बहुत कम लोग हैं। कृष्ण का भजन करने से सबका हो जाएगा, ऐसी धारणा ऐसी निष्ठा जिनकी हो उनको एकांतिक भजन भक्त कहते हैं। गीता में बतलाया गया चतुर्विधा भजन्ते न अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भा, कृष्ण का ही भजन करेंगे। कृष्ण का भजन कैसे करेंगे, उनसे अब हम कुछ मांगेंगे नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कृष्ण का भजन करेंगे, उनका भजन करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये अनन्य भक्त है, किंतु अनन्य भक्त होने पर भी अभी रुचि हरिनाम में नहीं है, करते करते नींद आ जाएगी, हरि कथा सुनते नींद आ जाएगी, रुचि नहीं। इसी के लिए वो कहते हैं यहाँ ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जो, कोई जीव ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 नाना प्रकार की योनियों से आकर मनुष्य जन्म लिया बड़े सौभाग्य से, क्यों देत ईश बिन हेत स्नेही, भगवान बड़े दयालु हैं, हमारा ये प्रिय जीव भटक रहा है, कभी स्त्री हो रहा है, कभी पुरुष हो रहा है, कभी मछली हो रहा है, कभी सुअर हो रहा है, कभी गधा हो रहा है, इसको मनुष्य जन्म दो और साधु संग इसको मिला दो, जिससे कि ये भगवान का हमारा भजन करके हमारे तरफ आ जाए, सुख और शांति आ जाए। इस तरह से कोटि कोटि ब्रह्मांड को घूमने पर भगवान की जब कृपा होती है तो उसको साधु संग दिला देते हैं, और साधु संग क्या चाहता है, रुपया पैसा नहीं, रुपये का सवाल नहीं, यदि रुपये का सवाल करता है तो साधु नहीं, ये समझ रखिए। कोई चीज विश्व का नहीं चाहता है, वो चाहता है क्या, वो निष्ठापूर्ण के हृदय को चाहता है, कि मैं तुम्हारे हृदय को लेकर के भगवान के चरणों में लगा सकूं, इससे अतिरिक्त और कोई लालसा नहीं। ऐसा गुरु संसार में मिलना बड़ा भारी कठिन है, ये भगवान की विशेष कृपा और उस साधुओं की विशेष कृपा से ऐसी भक्ति मिलती है, इस चीज को बिना ऐसे शुद्ध भक्तों की कृपा से नहीं। ऐसे संत लोग संसार में बिना किसी कारण के इधर उधर घूमते रहते हैं और देखते हैं कि कहाँ सा कौन सा ऐसा जीव है जिनको संग दे करके भगवान की भक्ति दे करके उसे उद्धार कर, जानते हैं कि कहीं ऐसा जीव नहीं है, बहुत कम है, तभी सुजोग देता है। बहुत विधा भगवतो हाँ कहते हैं कि साधुओं का अपना कोई काम नहीं है, जिसने घर छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, संपत्ति छोड़ दी, नौकरी चाकरी सब छोड़ दी, अब उनका संसार से कोई मतलब नहीं, तो अभी ये संसार में जो विचरण करते हैं कि इसलिए दूसरों का कल्याण हो, इसलिए अपना संग दे करके उनको भक्ति देने के लिए। अब वो उनकी कृपा से उन्होंने भक्ति का बीज हमारे हृदय में बोया, समझिए ये भक्ति लता का बीज क्या है, हम जो रोटी खाते हैं वो आटा से खाते हैं, आटा कैसे बनता है, बहुत चीज़ों से आटा बन सकता है, किंतु उसमें सबसे श्रेष्ठ चीज़ है गेहूँ। ये गेहूँ कैसे हुआ, खेत में फसल होती है उसमें बीज बोने से तब होता है, ये भक्ति का भी एक बीज है कुछ, वो क्या जरा अच्छी तरह से समझिए। समस्त प्राणी सुख के लिए कार्य करते हैं, दुख के लिए कोई नहीं करता, कोई भी प्राणी दुख के लिए कोई भी काम नहीं करता, सुख के लिए करता है। जो जो हम उपाय अवलंबन करते हैं, जैसे हम स्कूल में गए पढ़ने लिखने के लिए, किस लिए गए, सुख के लिए, लिखने पढ़ने के बाद में वहीं तक खत्म हो गया, नौकरी वाणिज्य व्यवसाय में चले,
यदि घाटा ही घाटा हो रहा है तो सुख मिला
नहीं।
धन संपत्ति अगाध है, सब कुछ हो गया, घर भी बना लिया। घर वाली यदि नहीं है या घर वाला नहीं है, केवल घर ही वाली है, फिर शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, होने से भी नहीं और कुछ चाहिए, इस तरह से कुछ कुछ लगा रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एकमात्र भक्ति के अतिरिक्त हम सुखी नहीं हो सकते। ये कैसे होगी? कृष्ण की सेवा करने से होगी। तो ये कृष्ण सेवा की वासना, जो कृष्ण की सेवा तू जो करेगा तो तुम जन्म जन्मांतर में सुखी हो सकोगे, गोलोक वृंदावन में भी तुम रह करके भगवान की सेवा कर सकोगे। इस चीज को किसी साधक के हृदय में वो बात जमा देता है, इसी को कहते हैं भक्ति लता भी। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतः, कृष्ण की भक्ति करने से हमारे जीवन का सब कुछ करना हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। इस चीज को पूरी तरह से हृदय में यदि कोई बसा दे, बना दे, इसका नाम है भक्ति लता का बीज। वो अब किस रूप में प्रकाशित होता है? श्रद्धा के रूप में प्रकाशित होती है वो वृत्ति। श्रद्धा माने क्या? श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये दृढ़ विश्वास क्या सुदृढ़ बा? शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, गुरु ऐसे कह रहे हैं, भगवान ऐसे कह रहे हैं, जो बिना भक्ति के कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए हम भगवान की सेवा करें। हमने एक पुष्प लिया और भगवान के चरणों में निवेदन कर दिया, हम इसको भक्ति प्रारंभिक भक्ति मानते हैं। अच्छा, तो भगवान को इससे क्या लाभ हुआ? भगवान को क्या लाभ हुआ? भगवान का पेट भरा ना, क्या हुआ उस फूल से? आपने जो श्रद्धा पूर्वक दी उसको भगवान ने ग्रहण किया, बस यही। वो स्थूल चीज को ग्रहण नहीं करते, आपकी भावना को ग्रहण करते हैं। उनको संसारिक स्थूल वस्तुओं से चावल डाल देते हैं, वो नहीं लेते, क्या लेते हैं? आपने जिस प्रेम से श्रद्धा से यदि भगवान को अर्पित किया वो लेंगे। इसलिए आप लाख तरह का चीज, स्वादिष्ट चीज भगवान को अर्पण कीजिए, परमानंद खूब खीर बनाइए, रसगुल्ले पांतुआ सब कुछ उनको दीजिए, और प्रेम से नहीं दिया तो लेंगे कि नहीं?
नहीं।
और एक चना, एक साग, एक तुलसी का पत्ता भी, एक पानी भी, ऐसे ही नमकीन पानी भी, यहाँ तक कि केले के जो खाने वाली चीज है उसको फेंक दिया, केले का छिलका भी दुरानी ने दिया, और सुदामा भी प्रणय कृष्ण को क्या दिए? चावल के टुकड़े, रसहीन काजने के कप के पुराने खुद जिसको कहते हैं, भगवान उसको कृतकृत्य हो गए। इसलिए भगवान इस स्थूल चीज को नहीं लेते। आप किस भावना से दे रहे हैं इस चीज को वो देखते हैं। ऐसी भावना किसी के हृदय में वो कोई भर दे, वही गुरु है, यही भक्ति लता का बीज है। यही भक्ति लता का बीज भगवान की कथाओं को श्रवण करते 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 पुष्ट होगी। पुष्ट होकर के क्या होगा? उसमें पत्ते निकलेंगे, कोमल कोमल पत्ते, और मंजरी निकलती चली जाएगी, बढ़ता जाएगा, ब्रह्मांड को भी भेद करके चला जाएगा। माने क्या ब्रह्मांड? माने क्या? यहाँ पर जितनी प्रकार की कामनाएं हैं उन सब कामनाओं को पार कर लेगा, संसार की कोई भी कामना में फंसेगा नहीं। जैसे अर्जुन हैं, महाराज जनक हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ये सब घर का काम करते हैं कि नहीं? घर का काम भी करते हैं, किंतु उनकी भक्ति के लिए लता कहाँ तक पहुँची है? बैकुंठ तक पहुँची है। आप नहीं इसकी कल्पना कर सकेंगे। इसलिए साधक इस जगत में रह करके भगवान का नाम कीर्तन श्रवण करता है, और कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। बैठा रहा यहाँ, किंतु साधारण लोग देखते हैं कि ये भी खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, वाणिज्य व्यवसाय कर रहा है, किंतु ये नहीं जानता है कि उसमें कोई कामना नहीं है। निष्काम भाव से भगवत अर्पित कर्म करते वो चला जा रहा है। हम लोग नहीं समझ, इसलिए इसकी भक्ति को नाम क्या क्या है? ब्रह्मांड को भेद करके चला गया। संसार कोई कामना वासना नहीं है, ब्रह्मा में भी कुछ कामना वासना है, इनमें नहीं है, इसके बाद में बीरजा, बीरजा मैंने क्या, यहाँ पर सत रज तम ये सब कुछ नहीं, उनको भी पार कर गया। इसके बाद में कहा एकदम वैकुंठ लोक में चली गई उसकी भक्ति, अर्थात कृष्ण के सिवा या नारायण की सेवा के अतिरिक्त और कोई काम नहीं, चित्त दिन रात उसी का, उसको भी पार कर गई। नारायण में कुछ ऐश्वर्य है, नारायण की सेवा हम कैसे करेंगे, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, आप प्रभु हैं मैं छोटा सा दास हूं, ऐश्वर्य भाव। इसे भी आगे रामचंद्र जी में चले जाई, वहां पर कुछ प्रीति आई, उसको भी पार करके भक्ति कहाँ गई, एकदम ब्रजलोक में गई। ब्रजलोक में भी उसकी डालियां हैं, पांच डालियां हैं, शांत दास्य सख्य और वात्सल्य और अंत में मधुर। उनमें से सबसे ऊंची डाल कौन सी है, ये मधुर रस की, यहाँ पर गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं। हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति धीरे 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 श्रवण कीर्तन करते 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 वहां तक पहुंची, वहां पर फल लगा। अभी साधक बैठा है यहाँ और वहां से फल पक करके गिरा और कहाँ आया, इस पृथ्वी पर जहाँ पर साधक है, अर्थात भाव अवस्था में उसी का रसास्वादन करता है, कभी कभी कृष्ण का दर्शन करता है। अंत में शरीर छूट जाने के बाद में उसी लता को अवलंबन करके वैकुंठ में पहुंच जाता है, उसे भी पार करके गोलोक वृंदावन में जाकर के कृष्ण की सेवा करने लगता है। यही समस्त भक्तियों से श्रेष्ठ भक्ति है, इसी को रूप गोस्वामी जी बतला रहे हैं। शुद्ध भक्ति से यह प्रेम उत्पन्न होता है, साधारण भक्ति से नहीं। शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये नौधा भक्ति। इसको और भी कर्टेल कर लीजिए संक्षिप्त में, तो और पांच प्रकार की, साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरा वृंदावन वास, श्री विग्रह का सेवन और नाम संकीर्तन। इनमें से भी नाम संकीर्तन साधु संग में रह करके, ब्रज में रह करके, मन से ब्रज में रह करके साधुओं के संग में निरंतर हरि नाम करना, कौन सा नाम, भगवान के जितने नाम है उन सब से जो श्रेष्ठ नाम है, गोविंद, राधा दामोदर, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राष्ट्रबिहारी, नंद नंदन, ये सब भगवान के नाम है, राधा रमण इत्यादि नाम है। इन नामों का कीर्तन करते हुए ये सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह से कहते हैं, देखो भाई पहले शुद्ध भक्ति का स्वरूप समझो। एक आदमी श्रवण कीर्तन कम करता है, समय हो गया, श्रवण 8 बज गया, श्रवण कीर्तन करता है किंतु रुचि दूसरों में भी है, जैसे कहीं से भी रुपया संग्रह करके बाग बगीचे बना करके ठाकुर जी की सेवा, जलाशय बना करके भगवान की सेवा, ये शुद्ध सेवा नहीं हुई। भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण ये जो बतलाया गया है ये डायरेक्ट उनकी स्वरूप सिद्धा भक्ति है। इसी के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को प्रेरणा दी और उनको बतलाया, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। जब कृष्ण काम भजन करते हैं, कृष्ण का नाम कीर्तन इत्यादि करते हैं, वो भी कृष्ण की सेवा के लिए ही करते हैं, अपने लिए फूल फल नहीं चाहते हैं। ज्ञान और कर्म इन दोनों से दूर रह करके उसके द्वारा ये भक्ति ढक न जाए, और किसी प्रकार से अपने लिए कामना मत करो सुख की, कोई भी अभिलाषा न हो, और तैलवत धारावत अविच्छिन्न गति से हमारा चित्त वृत्ति भगवान में लगा रहे, तो इसको कहते हैं उत्तम भक्ति। इसके उन्होंने उदाहरण पूर्वक विस्तार के साथ में उन्होंने बतलाया है। इसलिए हम लोग क्रमशः इसी रास्ते पर चल करके शुद्ध भक्ति के लिए हम अनुशीलन करें, यद्यपि जो अंग हैं उनमें सबसे अधिक भगवान का नाम कलयुग के लिए श्रेष्ठ,
यदि और कोई भगवान के भक्ति का अंग का पालन भी करेंगे तो नाम संकीर्तन के साथ साथ, जैसे हरि नाम श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, बीच बीच में नाम संकीर्तन हो जाता है, अर्चन करते हैं, ऐसे मंत्रों से अर्चन करने का उतना फल नहीं होगा, उसमें भगवान का नाम कीर्तन करो साथ साथ में। उसके मंत्र जो हैं कैसे हैं, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, सब भगवान के ये सब नाम उसमें हैं। इस तरह से भगवत संबंधी होकर के नित्य निरंतर यदि हम वैसा करने चले तो ये शुद्ध भक्ति होगी। ऐसे भक्ति से हम ब्रज प्रेम को पा सकते, बहुत ही दुर्लभ चीज है किंतु हो सकता है। यदि गोपियों ने पाया है, हमारे जनकपुर की कन्याओं ने, राजकन्याओं ने पाया, यदि दंडकारण्य के ऋषियों ने पाया, हम भी जरूर पा सकते हैं, किंतु निर्भर करता है साधु संग और गुरु के ऊपर। यदि गुरु वैसे हैं जो जिनको प्राप्त है तो दे सकते हैं, और नहीं तो गुरु के नहीं प्राप्त है तो वो शिष्य को क्या देंगे। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी को उन्होंने इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें बतलाया, किंतु अब समय हो गया है। उन्होंने बतलाया माली होकर के इसको सींचना पड़ेगा, निरंतर हरि कथा श्रवण करना पड़ेगा, घर के कामों के अनुकूल बना लीजिए। हमारे बेटे और घर के जितने हैं ये कृष्ण के दास दासी हैं, मैं भी वैसा हूँ, सचमुच में कुछ ऐसा संबंध लेकर के जो कुछ कीजिए ऐसा विचार कीजिए ये भक्ति में हमारा अनुकूल होगा कि नहीं। घर में ऐसी चीज़ें रसोई के लिए आए जो भक्ति के अनुकूल हो, जैसे अंडा है, गोश्त है, प्याज है, लहसुन है, गंदी चीज़ें हैं, ये भगवान की सेवा में नहीं आती। हम तो चावल, दाल, आटा, गेहूं ये खा करके जीवन हमारा निर्वाह हो सकता है, तो क्यों नहीं उन्हीं चीज़ों को लेकर के भगवान को भोग दे करके खाएं। इस प्रकार से सभी चीज़ों को अपने भजन के अनुकूल बना ले, घर के लोगों को भी अनुकूल बनाए, यदि नहीं हो सकते हैं तो उन पारमार्थिक संग मत करें, लौकिक संबंध उनसे संग कर सकते हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध होने से बात बिगड़ जाएगी, भक्ति नहीं होगी। इसलिए छह प्रकार के वेग हैं, उनका दमन करना पड़ेगा। क्रोध जीवा का, जीवा की लालसा, वचन कड़वा वचन मत बोलो, ऐसी वचन मत बोलो जो दूसरों को कष्ट हो, तुम्हारी भक्ति भी नष्ट हो जाए। दीनहीन हो, सब में भगवान को देखो, दूसरों को प्रतिष्ठा दो, अपने लिए प्रतिष्ठा के लिए लालसा मत करो, अपने जीव पर अंकुश रखो। उधर बेग माने पेट भरा हो और भी खाएंगे, स्वादिष्ट ऐसी चीजें न रहें। वाणी पर सबसे कंट्रोल अधिक रखने की चेष्टा करें, इस तरह से इन पर वाणी ये सब पर कंट्रोल रखते हुए अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमात्र, जनसंख्या, इन सबसे बचो, साधु संग में रह करके क्रमशः भजन करते हुए चलो। एक निष्ठा कृष्ण में चित्त लगे, और सब जितने भी भगवान के अवतार हैं कृष्ण के ही अवतार हैं ऐसा समझिए, और उनमें एकांतिक रूप से हमारी रति, जहाँ तो हो सके कभी कभी वृंदावन घुमाइए, साधु संतों के संग में कुछ हरि कथा सुनिए, श्रीमद् भागवत श्रवण कीजिए, इस तरह से भक्ति के द्वारा। आज इतना ही। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावन। कल कहाँ होगा सहगल जी के, बोल दीजिए तो।